प्रजापतिश्चर्ति गर्भेयंत्र जायमानो बौधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा परेत्यस्मान् लोकामृता भवन्ति। इस मंत्र में प्रजापतिश्चर्ति गर्भे अंतर जायमानो बौधा विजायते ये वाक्य है। प्रजापति, इस प्रजा संसार को या इन प्राणियों को मनुष्यों को सृजन करने वाला पैदा करने वाला प्रजापति, प्रजा का मालिक भगवान। प्रजापति चर्ति अंतर शब्द आता है, अंतर कहते हृदय में, और गर्भ भी हृदय रूपी गर्भ को कहते हैं, और या इस ब्रह्मांड के गर्भ में जैसे पृथ्वी लोक लोकांतरादि इन सब के गर्भ में वर्तमान है और हमारे इस शरीर रूपी गर्भ में भी वर्तमान है। बौधा भी जाए थे वो अनेक प्रकार से वो प्रकट हुआ हुआ है ज्ञानियों की तत्वदर्शियों की दृष्टि में, भगवान प्रत्यक्ष ही नजर आता है। तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा, उस सारे जगत के कारण रूप, योनि कारण को कहते हैं, एक उपादान कारण होता है एक निमित्त कारण होता है, तो वो उपादान कारण में भी होते हुए उपादान कारण के पृष्ठ भाग में कारण रूप से, अगर वो आधार ना हो तो ये जड़ पदार्थ प्रकृति भी नहीं स्थिर हो सकती, ये भी नहीं ठहर सकती, ये भी गतिशील नहीं हो सकती है। तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा, धीर विद्वान लोग योगी लोग उस भगवान को जो सबके गर्भ में वर्तमान है पश्यन्ति देखते हैं। समाधि की अवस्था में ध्यान की दृष्टि से अब ये तुम्हारी समाधि लगेगी, अब इसमें देखना, अब ये समझो डेढ़ मास होने को जा रहा है। फिर आगे कहा है परेत्यस्मान लोकामृता भवंती, वह जो उस भगवान को समझ लेते हैं और इस सारे संसार या ब्रह्मांड के स्वरूप को समझ लेते हैं, वो परेत्यस्मान लोकात, इस लोक से परेत्य मर करके या चल कर या गमन कर करके अमृतत्वम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये शब्द हैं इस वेद मंत्र के। सबको डेढ़ मास हो जाएगा साधना कराते हुए और प्रवचन करते हुए। प्रवचन में साधना के बहुत से साधनों का वर्णन किया गया है। अब पता नहीं कितने साधनों को आपने अपनाया होगा। कई दिन तक प्राण के द्वारा साधना का उपदेश देता रहा कि प्राण के द्वारा आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है, तो इसमें भी अनेक साधन बतलाए थे कि प्राण को पकड़ करके ले करके हम या उसके साथ स्पर्श करें, टच करें। वैसे तो प्राण के साथ हम आकाश को भी टच करते हैं, जब प्राण फेंकते हैं बाहर श्वास को तो आकाश के साथ संबंध होता है। तो जिस प्रकार इस आकाश के साथ तुम्हारा प्राण का संबंध होता है, यहाँ भी तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत, तुम अपने अंदर ना समझ करके इस आकाश के साथ ही मिला जुला, जैसा ये आकाश है वैसा ही इससे मिला जुला, इससे सूक्ष्म तदरूप भगवान को भी बाहर समझ लो इस आकाश मंडल में। तुम अपने अंदर भी ना देखो, पहाड़ में भी ना देखो, इस आकाश में देखो। यद खम तद ब्रह्म, जैसा ये आकाश है वैसा ही ब्रह्म भी है। यहाँ ब्रह्म के साथ सादृश्य व्यापकत्व किया गया है। जितने दृश्यमान पदार्थ हैं और ये आकाश सबको व्याप्त करके रहता है, तो इस प्रकार की व्याप्ति और किसी पदार्थ की संसार के दृश्यमान पदार्थों में देखने में नहीं आती जैसी कि आकाश की व्याप्ति है। तो आप और चीज़ों को ना ढूंढते हुए अगर ये बात समझ में आ जाए कि देखो इस आकाश के बिना हमारे कोई कार्य नहीं होते, हमारा गमनागमन रूप धर्म भी इसमें नहीं होता। अगर आकाश हमको आगे अवकाश ना मिले, आकाश के तीन धर्म होते हैं, एक तो रचना, पदार्थों की रचना इसमें होती है, सम्मेलन होता है, व्यूह एक अवकाश देता है, ये अवकाश देता है यहाँ, और एक गति, गति का हेतु भी आकाश है। वायु में जो गति रूप धर्म आया है ये इस आकाश से ही आया है, अगर आकाश में ये गति रूप धर्म ना होता तो वायु में भी ये धर्म नहीं आना था। तो इसलिए आकाश के समान परमात्मा की तुलना की है आचार्यों ने, विद्वानों ने, योगियों ने। जब आप इस आकाश को प्रत्यक्ष अनुभव करते हो तो इसी प्रकार परमात्मा को भी क्यों नहीं प्रत्यक्ष अनुभव करते, उसके लिए तुम्हें इतनी मुश्किलात क्यों पैदा हो रही है, इसके लिए क्यों नहीं? जैसा ये आकाश है इसके बिना भी हमारे कोई कार्य सिद्ध नहीं होते, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए। अगर इस आकाश को हम परमात्मा मान लेवे, इस आकाश को ही हम परमात्मा मान लेवे, तब एक मुश्किल होगी। आकाश ठीक है, रचना का भी हेतु है, गति का भी हेतु है, पर ज्ञान का हेतु नहीं। गति तो दे देगा, ये चलने की जगह तो दे देगा, पर ज्ञान नहीं देगा। परमात्मा के अंदर इसकी अपेक्षा एक ही गुण, अगर गुण ही मानते हैं तो एक ही विशेष ज्ञान, विशेष गुण है ज्ञान। बस ज्ञान को इसके साथ मिला दो, ये आकाश ही तुम्हें भगवान के रूप में प्रतीत होने लगेगा। अब इस प्रकार के परमात्मा के भी आचार्यों को, प्राचीनों को कहूँगा अब तो, क्योंकि अर्वाचीन तो क्लास में हम भी हैं, प्राचीन आचार्यों ने आकाश के भी भेद बना दिए और परमात्मा के भी बना दिए। आप किसी देश में किसी स्थान में चले जाओ, आकाश आपको सब जगह मिलेगा। आकाश का मतलब है जो अवकाश दे। किसी लोक लोकांतर पर, चंद्रमा पर चले जाओ, मंगल पर चले जाओ, सूर्य पर चले जाओ, सूर्य को भी वहाँ आकाश अवकाश देता है गमन करने के लिए, चंद्रमा को भी देता है। सिर्फ वहाँ एक चीज की कमी होती है, प्राणदा वायु ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ, तो इसलिए वहाँ आकाश तो ऐसा ही, आकाश में कोई अंतर नहीं है। परंतु और दूसरे जो पदार्थ हैं, जैसे जल है, अग्नि है और वायु है, और पृथ्वी में भी कुछ अंतर होता है, जैसे एक पृथ्वी तो ये है जो हमारे लिए वनस्पति औषधि उपजा रही है, पृथ्वी के ऊपर का भाग, और एक पृथ्वी इसके गर्भ में भी है जहाँ गैस ही जल रही है, और वहाँ जो भी पदार्थ होता है उसको सबको भस्म बनाती रहती है। इस पृथ्वी के गर्भ में गैस वर्तमान है, अग्नि जिसको कहते हैं, वह अग्नि गैस के रूप में वर्तमान है, तो वो इसको उठाए हुए फिर, परंतु आकाश वहाँ भी वर्तमान है। आकाश में कोई अंतर नहीं है, और पदार्थों में तो अंतर हो जाएगा, वहाँ की वायु में अंतर हो जाएगा, जल में अंतर हो जाएगा, पृथ्वी के भाग में अंतर हो जाएगा, अग्नि में अंतर हो जाएगा, परंतु आकाश का कोई ऐसा अंतर नहीं होता, क्योंकि सब जगह ये प्रत्येक पदार्थ को कोई कहीं हो सबको अवकाश देता है। और रचना वहाँ, क्योंकि परस्पर पदार्थ लोहा तांबा आदि ये धातुएं वहाँ बनती रहती, निर्माण होती रहती, पाकज रूप धर्म बनता रहता है, तो इनको बनने में वहाँ आकाश अवकाश देता है। तो आकाश के धर्मों का किसी पदार्थ में जाकर, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में अभाव नहीं होता, तीन प्रकार के धर्मों का, ये तीनों सर्वत्र बने रहते हैं, व्यूह रचना अवकाश और गति। अब ये परमात्मा में, क्योंकि गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति, तो परमात्मा में ज्ञान, गमन, प्राप्ति की बात है ज्ञान, क्योंकि प्राप्ति तो आकाश में भी है, तो इसलिए इसकी प्राप्ति से हमारे काम चल जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति की बात नहीं बनती। अच्छा, गमन ये अवकाश देता, इससे भी काम चल जाएंगे, प्राप्त होना भी किसी देश में स्थान पर भी पहुंच जाएंगे, पर ज्ञान की बात आकाश में नहीं मिलती है, क्योंकि ज्ञान जो स्वभाव या धर्म या स्वरूप है वो चेतन का ही है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी आत्मा जीवात्मा जो वर्तमान है, इसमें भी अवकाश है, पर ज्ञान गमन प्राप्ति, यहाँ भी प्राप्ति भी है और गमन भी है, पर अगर इसमें से चेतन का अभाव कर दिया जाए, मुर्दे में ये बात नहीं रहती है, तो इसलिए ज्ञान रूप है, चेतन जो है ज्ञान रूप वो इसमें भी वर्तमान है, इसलिए हमारे सारे कर्म जितने भी हो रहे हैं ज्ञान पूर्वक हो रहे हैं, और ब्रह्मांड में भगवान के भी कर्म ज्ञान पूर्वक ही हो रहे हैं। समय पर ही सूरज निकलता, समय पर ही चलता, समय पर ही इनमें गर्दिशें होती हैं, कोई अंतर तुम्हारा देखने में नहीं आता, हमारे कामों में भले अंतर आ जाए, क्यों कि वो सर्व देश में व्यापक है, हमारे में तो अंतर इसलिए आता ये एक देशी है, सर्व देशी में ये भेद गलती का भेद नहीं आता है। और ये जो कभी कभी टकराव हो जाते हैं लोक लोकांतरों के, जैसे एक प्रकार से यहाँ भी तो एक्सीडेंट शहरों में भी तो होते हैं ना टकराव, तो कभी कभी ये गमन करने वाले जो पदार्थ हैं इनमें परस में आपस में टकराव होता, चेतन में कोई अंतर नहीं आता। इसी प्रकार हमारे यहाँ भी पदार्थों का शरीर में परस्पर खान पीन आदि औषधि आदि का परस्पर टकराव होता है प्रत्येक शरीर के देश में, परंतु आत्मा में कोई अंतर यहाँ भी नहीं आता और चेतना में वहाँ भी कोई अंतर नहीं आता। तो ये दो प्रकार की चेतना, छोटा ब्रह्मांड ये शरीर है, बड़ा ब्रह्मांड ये विश्व है, छोटे इस ब्रह्मांड के हम मालिक हैं और बड़े ब्रह्मांड का परमात्मा मालिक है। तो इस मलकियत में छोटे की छोटी मलकियत होगी, बड़े की बड़ी मलकियत, इसमें हम दोनों बराबर हैं। चेतना के नाते जैसी चेतना भगवान की है ऐसी ही हमारी है, अगर हमारी चेतना में अंतर होता तो हमारे ये शरीर के कार्य व्यापार नहीं चलते, अगर भगवान की चेतना में भी अंतर होता तो ये लोक लोकांतर समय पर उदय होना अस्त होना आदि ये व्यापार नहीं होते। के द्वारा भी अनेक युक्ति और उपायों का वर्णन किया गया था परमात्मा के साथ मिलने के लिए, और फिर ज्योति के द्वारा, अग्नि के द्वारा भी, अग्नि भी बहुत प्रकार की शरीर के अंदर बताई गई थी, अग्नि के द्वारा भी तो देखा जा सकता है। आप मेरे ख्याल में थोड़ी देर के लिए आत्मा को, जीव आत्मा को इस शरीर के बराबर ही समझ लेंगे, छोटा अणु की बात अभी ना करें। जब अगर इतना बड़ा ये समझ में, क्योंकि बड़ी चीज जल्दी समझ में आ जाया करती है, छोटी जरा देखने में मुश्किल होती है, उसके लिए बहुत खुर्दबीन दूरबीन वगैरह लानी पड़ेंगी। तो आप इस शरीर के ही बराबर आप इसमें आत्मा को समझिए, और इस शरीर में सारे पदार्थों के अंतिम, जैसे सारे पदार्थों के अंतिम पृष्ठ भाग में चेतन सत्ता भगवान की है, इसी प्रकार हमारे शरीरों के पृष्ठ भाग में अंतिम चेतन सत्ता परम जीवात्मा की है, पर वो है सबसे सूक्ष्म। अब सूक्ष्म होने से जब हम विज्ञान की दृष्टि से चलते हैं, तो जैसे पहली दूसरी तीसरी क्लास आदि पढ़ते हुए बच्चे जा करके एमए में उनकी बुद्धि सूक्ष्म बनती है, 14 क्लास में जाते हैं, तो इसी प्रकार आप अपनी बुद्धि को पहले इस स्थूल मोटे ताजे शरीर में ढूंढें, इसमें कहीं वो मिल जाए, क्योंकि इससे भी सूक्ष्म है, और फिर अगर आप और सूक्ष्म शरीर को भी मानते हैं तो सूक्ष्म शरीर में भी जा कर के देखें, क्योंकि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर और बारीक है, फिर उससे भी आगे आप जा कर के देखें कारण शरीर, कारण शरीर इन दोनों से और सूक्ष्म है, तो कारण शरीर के अंतिम छोर पर आपको चेतन सत्ता खड़ी ही मिलेगी। जैसे ये आकाश मंडल में आप आते हैं, पहला आप भाग लो पृथ्वी का, पृथ्वी को उल्लंघन करके पृथ्वी के गर्भ में से निकल करके फिर आप जल के गर्भ में आएंगे, क्योंकि पृथ्वी को संगठित जल ने किया हुआ है। अगर जल उसमें से निकाल दोगे तो बिखर बिखर के कण कण होकर के परमाणु के रूप में, एटम के रूप में आकाश में उड़ जाएगी। तो उससे सूक्ष्म जल है, जल ने उसके गर्भ में प्रवेश कर करके उसके परमाणुओं को, उसके अणुओं को संगठित कर दिया, और इन दोनों से, पृथ्वी से, जल से सूक्ष्म अग्नि है। उन संगठित किए हुओं को पाकज रूप धर्म इसने पैदा किया। पृथ्वी ने भी धातुओं आदि अनेक पदार्थों के पकाने का, पाक का काम अग्नि करती है, और हमारे शरीर में भी अग्नि ही सारे पदार्थों का, सारी धातुओं का, स्थूलों का भी, सूक्ष्मों का भी, कारणों का भी अग्नि ही पाक करती है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, तो उनसे सूक्ष्म अग्नि है, फिर अग्नि से भी और सूक्ष्म आपको ये जो प्राण शक्ति है, वायु शक्ति है, ये लोग तो नहीं मानते, ये तो विद्युत को सूक्ष्म मानते, भौतिक विज्ञानवादी। परंतु अब इनसे पूछना, वो जो एनर्जी आई है तुम्हें एटम के बाहर, वो क्या चीज़ है, क्या पता उसी को ना ये कहने लगे। फिर अभी तो बहुत से आदमी उसी को चेतन, पर चेतन तो उससे बहुत आगे की बात है, ये तो केवल एटम की, एटम का विस्तार हुआ, वो इतनी बड़ी सूक्ष्म चीज एटम में इकट्ठी हुई हुई थी, अब उसको तोड़ा है, वो फैली है। जैसे कोई चीज़ पीसने से किसी में घोल दी जाए, वो एटम पीस करके, घोल करके फैलाया है आकाश मंडल के अंदर। अभी तो आकाश से भी सूक्ष्म और बहुत पदार्थ पड़े हैं, अभी उस एनर्जी पे कहाँ रुकेंगे ये, क्योंकि प्रत्यक्षवादी। तो ये अग्नि जो है, ये इनसे भी सूक्ष्म, और इनसे सूक्ष्म है वायु। चंद्रलोक, सूर्य लोक आदि में अग्नि तो वर्तमान है, परंतु वैसी प्राणदा वायु नहीं है, इसलिए वहां जीवन नहीं रहता। चंद्रलोक पर, मंगल आदि पर, सूर्य पर, वहां प्राणदा वायु नहीं है, प्राण के रूप में इस प्रकार की वायु नहीं है, जो जिसको आप ऑक्सीजन कहते हैं, वो चीज वहां नहीं। तो ये वायु भी, इसके 48 प्रकार के भेद हैं, और 49वां भेद जाकर के ये प्राणदा वायु है, जो जीवन का आधार बनती है। तो इस प्रकार की वायु वहाँ नहीं होती, इसलिए वहाँ शरीरों का आवास या निवास नहीं होता। अब इससे भी सूक्ष्म, वायु से भी सूक्ष्म इस आकाश की बात कही है। तो इस प्रकार अब चले आप विज्ञान की दृष्टि से, पहली दूसरी क्लास पढ़ते हुए पहले स्थूल शरीर में देखा, वहाँ भी आत्मा नहीं है, फिर सूक्ष्म शरीर में जाकर देखा, वहाँ भी नहीं, फिर कारण शरीर में जाकर पहुँचा, फिर आपको बात समझ में आई। जैसे वहाँ से पृथ्वी में चले, जल में आए, अग्नि में आए, और वायु में, फिर अंत में आकाश को आन करके आपने पढ़ा। तो इस प्रकार आपको चेतन का अनुसंधान करना होगा, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म सत्ता हमारे शरीर में है, और इस ब्रह्मांड के गर्भ में भी सबसे सूक्ष्म सत्ता और महान सत्ता वहाँ है। शरीर, तीनों शरीरों की अपेक्षा चेतन सत्ता इसमें महान है, सारे पदार्थों की अपेक्षा चेतन सत्ता परमात्मा की उनमें भी महान है। तो इसमें अगर आप ढूंढ लोगे तो यत पिंडे सो ब्रह्मांडे, परमात्मा भी समझ में आ जाएगा, ये ब्रह्मांड भी समझ में आ जाएगा। पर कारण शरीर को नहीं मानते, तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये तो मानते हो ये पंचभूतों का बना हुआ है। तो इसमें पहले पृथ्वी के भाग में चलो, जो इस शरीर के अंदर अस्थि आदि के रूप में, इन चीज़ों, मोटी मोटी चीज़ों के रूप में, फिर उसके आगे उल्लंघन कर करके जो जल का भाग इसमें है, रक्त आदि के रूप में, पसीने आदि के रूप में, या और जो किसी रूप में है, कफ आदि के रूप में, उसमें प्रवेश करो, और फिर आगे जो इसमें अग्नि का भाग है, उष्णता सारे शरीर में देखने में आ रही है, उसमें प्रवेश करो, और फिर उसके बाद में प्राण है, प्राण शक्ति, वायु जिसको कहें। तो उसमें प्रवेश करो, क्योंकि प्राण भी